नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक बादशाह एक संत के पास पहुंचे ताकि वो उनसे कुछ उपदेश ले सकें। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की तो संत अपने आश्रम के एक कोने में उन्हें ले गए जहां तीन पिंजरे रखे हुए थे। एक पिंजरे में चूहा रखा हुआ था, उसके सामने बहुत सुंदर मेवे रखे हुए थे, लेकिन वो चूहा उसे खा नहीं रहा था। दूसरे पिंजरे में बिल्ली रखी हुई थी, उसके सामने भी दूध एक कटोरी में रखी हुई थी, लेकिन वो भी बिल्ली उसे पी नहीं रही थी। तीसरे पिंजरे में एक बाज रखा हुआ था, उस बाज के सामने एक मांस का टुकड़ा रखा हुआ था, लेकिन वो बाज भी उस मांस के टुकड़े को नहीं खा रहा था। अब बादशाह ने इन तीनों को देखा कि तीनों के सामने भोज्य पदार्थ रखे हुए हैं और तीनों की प्रिय चीजें रखी हुई हैं, लेकिन ये तीनों खा क्यों नहीं रहे हैं, और उनके चेहरे पे भय और दुविधा की स्थिति भी दिखाई दे रही थी। बादशाह ने संत से पूछा कि आप क्या उपदेश देना चाहते हैं ये तीनों पिंजरे दिखा करके मुझे। तो संत ने कहा, देखो, चूहे के सामने मेवा रखा हुआ है, बड़ा ही प्रिय मिष्ठान है उसका, और वो खाना तो चाहता है, मेवा मिल जाए चूहा छोड़ता नहीं है, लेकिन वो चूहा बिल्ली से डर रहा है, और बिल्ली जो है वो बाज से डर रही है, इसीलिए अपने सामने रखी हुई चीजें भी ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं, भयभीत हैं। बादशाह ने कहा, लेकिन बाज की क्या स्थिति है? तो संत ने कहा, बाज के सामने मांस रखा हुआ है, वो खा सकता है, लेकिन वो इस दुविधा में है इन दोनों को देख करके कि मैं पहले चूहे को खाऊं या फिर पहले बिल्ली को खाऊं, और यदि यही स्थिति इन तीनों की बनी रही लंबे समय तक, तो इस भय और दुविधा की स्थिति में ही इन तीनों के जीवन का अंत हो जाएगा। इसीलिए हमें डरना भी नहीं चाहिए और साथ ही दुविधा की स्थिति में भी नहीं रहना चाहिए। भविष्य में जो होगा वो तो होगा, अंत तो निश्चित ही है हरेक का, लेकिन वर्तमान का यदि आनंद लिया जाए भय और दुविधा की स्थिति से निकलकर, तो हम जीवन का संपूर्ण सचमुच आनंद ले सकते हैं, जीवन को संपूर्ण रूप से जी सकते हैं। यही उपदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। बड़ा ही सुंदर सा उपदेश था ना मित्रों। कई बार हम भय की स्थिति में रहते हैं कि भविष्य में पता नहीं क्या होने वाला है, हमारे परिजनों के साथ क्या होने वाला है, मेरे साथ क्या होने वाला है, या वर्तमान में जो घटित हो रही हैं, जो परिस्थितियां आ गई हैं, ना जाने ये किस हालत में मुझे ले जाकर के छोड़ेंगी, भय या फिर एक दुविधा की स्थिति की कैसे करें क्या करें, ये वाली स्थिति दुख को पैदा करती है। इन दोनों से हम मुक्त रहें और जीवन का आनंद लें। ऐसे सुंदर प्रसंग के साथ, इस सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू
भ्राता जी। इस प्रसंग या उपदेश के बारे में क्या कहेंगे?
सचमुच भय मनुष्य के लिए बहुत ही घातक चीज है। एक विद्यार्थी को यदि भय है तो एग्जाम में वो सब कुछ भूल जाता है। घर में यदि भय का वातावरण है तो सबकी बुद्धि का विकास ही रुक जाता है, एक दबाव बना रहता है और सब लोग डरे डरे से रहेंगे, उनकी पर्सनैलिटी का भी विकास नहीं होता है। तो सचमुच वर्तमान को एंजॉय करने के लिए मनुष्य को न भविष्य का भय होना चाहिए, न किसी अनहोनी घटना का कि कहीं ये न हो जाए, और वर्तमान में भी उसे ये संकल्प रखना चाहिए, हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमारे साथ है, उसकी छत्र छाया हमारे सिर पर है, हमें कोई डरने की बात ही नहीं। साथ में ये भी संकल्प रखना चाहिए कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। देखिए, संकल्प का बड़ा महत्व है। हम इस बात की चर्चा बहुत बार कराए हैं कि हमारे हर संकल्प में एक क्रिएटिव एनर्जी है, और वो संकल्प जो हम बार बार करते हैं वो तो उसी सिचुएशन को क्रिएट भी करता है। ये पावर ऑफ थॉट का कमाल है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के बारे में बार बार निगेटिव सोचता रहे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, उसके मन में विजन भी बहुत बनती रहती है उस तरह की, तो समझ लें वो उस चीज को क्रिएट कर रहा है और कुछ समय के बाद वो घटना घटित हो सकती है। इसलिए ये संकल्प बहुत ही सुंदर है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, इससे सब कुछ अच्छा होता जाएगा, और ये भय और कंफ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति हमेशा बदलती रहेगी।
जी, कैंपस में मैंने एक बहुत ही अच्छा सा स्लोगन लिखा हुआ देखा था कि भगवान उवाच कि यदि तुम अच्छा अच्छा सोचोगे तो यदि कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा भ्राता जी, और ये शायद संकल्प शक्ति के प्रयोग का एक सुंदर सा एक एग्जाम्पल या नमूना है।
सोच पे ही तो सब कुछ निर्भर कर रहा है, और आज की अनेक समस्याओं का कारण, दुखों का कारण, परेशानियों का कारण मनुष्य का सोच ही है। यदि मनुष्य अपने सोच पे जरा ध्यान दे दे, वो अच्छा सोचने लगे, पॉजिटिव सोचने लगे, उसके मन में शुभ भावनाएं और प्रेम भर जाए, तो उसको जीवन जीने का आनंद आएगा बहुत। इसलिए हम तो बार बार हालांकि वही बात है, लेकिन बार बार याद दिलाने की है, क्योंकि मनुष्य का सोच निरंतर चल रहा है। मनुष्य के मन में सारे दिन में 30-40 हजार विचार उठ जाते हैं। वो अगर अपनी सोच को बहुत अच्छा कर लेगा तो उसके पास एनर्जी बहुत होगी, वो सफल भी बहुत होगा और उसे जीवन जीने का मजा आएगा, उसके परिवार में भी बहुत अच्छा प्रेम सौहार्द का वातावरण होगा।
यद्यपि बहुत हमारी चर्चा हो चुकी है व्रत जी, लेकिन चलिए अब सोच की बात निकल गई है तो कुछ टिप्स चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर आज निगेटिव या व्यर्थ सोच ही लोगों के चलते हैं, या कई बार व्यक्ति ध्यान ही नहीं देता, जो सोचा ही जा रहा है, और यदि ध्यान दे तो यही पाता है कि निगेटिव चल रहा है या वेस्ट चल रहा है, कैसे वो पॉजिटिव हो जाए।
हाँ, उसको ये तो बहुत को पता चलता है कि भाई मैं चिंता बहुत करती हूँ, मुझे डर बहुत है, मेरे निगेटिव संकल्प बहुत चलते हैं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इसमें परिवर्तन कैसे लाया जाए। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे रोज कुछ चर्चा हो, हर मनुष्य रोज 10 मिनट भी इसके बारे में कुछ अच्छा सुने तो धीरे धीरे उसके सोचने का तरीका बदल सकता है। अन्यथा एक ऐसा फ्लो मनुष्य के मन में है चारों ओर के वातावरण के कारण, कुछ पास्ट के कारण, कुछ उसमें अपने ही कुछ संस्कार ऐसे हैं ज्यादा सोचने के, भयभीत होने के, कंफ्यूज होने के, निराश रहने के, वो उसको बहुत निगेटिव करते हैं। इसलिए पहला संकल्प तो हर मनुष्य को रखना चाहिए कि मुझे निगेटिव से बचना है, क्योंकि ये जीवन के लिए खतरनाक है। सबसे बड़ा खतरा तो हेल्थ पर आता है, आत्मा यहाँ बैठकर सोच रही है, उसकी एनर्जी ब्रेन को जा रही है, पूरे देह में फैल रही है। अगर वो निगेटिव सोच रहा है तो उसके ब्रेन की शक्ति भी कमजोर पड़ रही है, देह पर भी उसका बुरा इफेक्ट आ रहा है, तो बीमारियां बढ़ रही हैं, कहीं दवाई काम नहीं कर रही हैं। बहुत केसेज ऐसे आते हैं आजकल तो बहुत आने लगे कि डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आता कि बीमारी है कहाँ, उसका जड़ कहाँ है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है, दर्द चल रहा है पर क्यों चल रहा है पेट में दर्द, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की समझ में नहीं आता। अगर मनुष्य अपने संकल्प को सचमुच ठीक कर ले तो बहुत अच्छा हो सकता है। और इसी के लिए स्पिरिचुअलिटी की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे किसी भी टीवी चैनल पर ये तो आता नहीं कि भाई ये न सोचकर ये सोचो। अगर टीवी चैनल वाले ये दिखाने लगे ना, एक 10 पॉइंट्स निकाले, 5 एक बार दिखा दे, 5 एक बार भाई ये निगेटिव सोचता है मनुष्य, इसकी जगह आप ये सोचा करो, तो धीरे धीरे मनुष्य सीखने लगेगा, बच्चे भी देखेंगे और बहुत अच्छा हो जाएगा। हम भी कोशिश करेंगे अपने इस चैनल पर भी ऐसी एक चीज आने लगे। स्पिरिचुअलिटी की इसके लिए बहुत आवश्यकता है। स्पिरिचुअलिटी में जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारा कनेक्शन सर्वशक्तिवान परमपिता से होता है, उसकी एनर्जी हम में आने लगती है और हमारे संकल्पों में शक्ति आ जाती। शक्ति का अर्थ है जिसको हम विल पावर कहते हैं, मनोबल कहते हैं, कि हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें हम सीखते और सिखाते हैं स्वमान की प्रैक्टिस। बहुत सारे स्वमान हैं, भगवान ने हमें टाइटल दिया है। स्वमान का अर्थ होता है स्वयं परमपिता ने आकर हमें जगाया है, यानी हमारी आंतरिक चेतना को जगाया, तुम ये नहीं हो ये हो, तुम कमजोर नहीं हो तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम पापी नहीं हो तुम बहुत पुण्य आत्मा हो, तो तुम इस सृष्टि में महान हो, तुमने हीरो पार्ट बजाए हैं, ये सब याद दिलाया। इस स्मृति में रहना, इसको स्वमान कहते हैं, यानी एक ईश्वरीय नशा है। स्वमान से विचार आप ही श्रेष्ठ हो जाते हैं। जब मनुष्य को ये फीलिंग होती है कि मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, देखिए हमारा ये एक स्वमान है, और मनुष्य इसे स्वीकार करता है कि तुम देव कुल की महान आत्मा हो, तो उसके अंदर ये एक सूक्ष्म रूप से चिंतन होता है कि फिर तुम ये सब क्या सोच रहे हो, तुम महान हो, तुम्हें महान सोचना है, तुम्हें महान कार्य करने हैं। रोज सोचते सोचते विचार बदलते जाते हैं। तो योग अभ्यास किया जाए, स्वमान की प्रैक्टिस की जाए। और तीसरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे यहाँ तो बहुत है पर संसार में उसका बहुत अभाव हो गया है, सत साहित्य का अभाव, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गया है। वैसे भी लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, बच्चों को भी मौका कहाँ मिलता है कि वो कुछ अच्छे साहित्य का अध्ययन करें, लेकिन चाहे हमारे सिलेबस में ऐसी अच्छी बातें आए या कुछ ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें मिले जिसको पढ़ने में बच्चों को, खासकर बच्चों को रुचि हो और बड़ों को भी रुचि हो, और सब उस सत साहित्य से अच्छा चिंतन करना सीखें। इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तीन चीज यदि मनुष्य लेकर चले तो बहुत अच्छा होगा। देखिए हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो रोज सवेरे एक स्पिरिचुअल क्लास होती है, उससे मनुष्य को बहुत सुंदर विचार मिलते हैं, 200 मिलते हैं, 50 मिलते हैं, लेकिन मनुष्य को एक दो विचार भी पकड़ में आ जाए कि भाई ये नहीं ये, तो उसका जीवन बदल जाता है। ऐसी कुछ प्रैक्टिस चाहे घरों में हो। देखिए पहले तो गीता पढ़ी जाती थी, भागवत सुनाया जाता था, रामायण सुनाई जाती थी, आजकल तो प्रथा संपूर्ण रूप से जीरो पर आ गई है। इसलिए ये चीज फिर से आवश्यक हो गई है अपने मन को ठीक करने के।
बिल्कुल, मतलब ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं और पहले ये किया जाता था, इसलिए शायद व्यक्ति बहुत ही शांत और स्थिर रहा करता था, जीवन भी बहुत संतुलित था। आज शायद उन चीजों को फिर से शामिल करने की आवश्यकता है। दूसरी एक बात बताइए, जो बाज की स्थिति थी वो भी आजकल देखने में आती है कि व्यक्ति दुविधा में बहुत रहता है, ये करूं या ये करूं, और ये करूं ये करूं के चक्कर में जो उसको उपलब्ध है
वो भी
उसका सुख भी नहीं ले पाता और उन दोनों में से भी कुछ नहीं कर पाता। ये दुविधा की स्थिति से भी बाहर कहते हैं।
ये स्थिति बहुत होती है कि उनके पास पैसा है तो वो और कुछ देखते रहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो और कुछ देख रहे हैं, विद्यार्थी और किधर देख रहा है कि वो खिलाड़ी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इस पढ़ाई लिखाई में क्या रखा, वो करना चाहिए, उधर उसको रहता नहीं पढ़ाई भी तो बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्समैन तो बन गए लेकिन पढ़ाई नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा, वो भी कंफ्यूजन में है। एक बिजनेसमैन है वो भिन्न भिन्न तरह से कंफ्यूज रहता है, अरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, मेरी कम चल रही है, देखा मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दे दिया। आजकल ये समस्याएं बहुत चल रही हैं, तो इस कंफ्यूजन की स्थिति को भी हमारा ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान ठीक कर देता है। ईश्वरीय ज्ञान से हमारे पास एक स्पष्ट समझ होती है, बस ये करना है, ये अब हमें नहीं करना है, तो मनुष्य में एक डिटर्मिनेशन भी आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, और जो कुछ उसे करना उसके लिए वो दृढ़ संकल्पधारी भी हो जाता है और वो ठीक रहता है।
पहला हमें भूमि जी ने भेजा है, ये कहती है कि मैं विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ, 18 वर्ष हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ससुराल में मुझे कुछ सुख प्राप्त नहीं हुआ, कभी भी हस्बैंड की तरफ से मुझे पैसे भी प्राप्त नहीं हुए हैं। मेरे हस्बैंड गांजा पीते हैं और अभी वो घर में जब आते हैं तो लड़ाई झगड़े वाली स्थिति हो जाती है, गाली गलौच आदि भी वो करते रहते हैं, मारना पीटना ये तो चलता ही रहता है। ये सब तो ठीक है लेकिन वो घर में एक पैसे भी नहीं देते हैं, तो मैं इस दुविधा की स्थिति में रहती हूँ कि घर को कैसे चलाया जाए। तो दो प्रश्न है, कैसे उनकी इस गांजे पीने की आदत को छुड़ाई जाए और घर की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे ठीक हो, पैसे भी वो नहीं देते।
पहले तो क्योंकि वो पैसे नहीं देते, दो चार दिन उनका खाना ही बंद रखा जाए, भाई पैसे ही नहीं है खाना कहाँ से बनेगा, शायद उनमें जागृति आ जाए।
हमारी मातृशक्ति में ये है बेहतर जी कि वो बड़ी कोमल
कोमल है, कहीं ना कहीं से वो
जुगाड़ करके
बनाएंगे। पर बहुत लोग इस तरह का व्यवहार रखते हैं घरों में कि बुरे व्यसनों के लिए तो उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन घर में सुख रहे, सबको अच्छा भोजन मिले, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, उसके लिए उनके पास पैसा नहीं होता। ये बहुत सारी बातें आती रहती हैं और ये तो केस आजकल बड़े कॉमन हो गए हैं बहुत परिवारों में कि पति पत्नी की बनती नहीं है, झगड़ा बहुत होता रहता है और इसको व्यसन की आदत है नशे की, तो इसका तो क्रोध और बढ़ा रहता होगा और जब वो घर में आता होगा निश्चित रूप से ये उसे कुछ कहते होंगे और क्या कहते ही वो उबल जाता है। तो इनको अपने घर में शांति लाने के लिए और ये दोनों चीज ठीक करने के लिए पहले तो जो भोजन बनाए वो पवित्र बनाए। देखिए किसी को जबरदस्ती तो गांजा या ड्रिंकिंग या और जो बुरी व्यसन है उनसे छुड़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसको अपना जीवन बना चुके होते हैं, वो उधार लेके भी कर्ज उठा के भी वो सब खान पान चालू रखते हैं और उनकी बुद्धि इतनी मलिन हो जाती है कि वो उसके अलावा कुछ सोच नहीं पाते। कईयों का तो बल्कि ऐसा होता है वो काम भी नहीं करते कुछ, और पीने के लिए भी घर से ही उन्हें पैसा चाहिए। कमाओ तुम, पत्नी को कहेंगे माँ को कमाओ तुम और मुझे पिलाओ। एक काम ने नहीं सुना था, वो कहता है माँ को तुमने मुझे पैदा क्यों किया, पैदा किया तो मुझे पिलाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, है तो ये सब कर्मों का खेल। तो एक तो इन्हें पवित्र भोजन उसे खिलाना है। इस बात को हमारी सभी बहनें बहुत अच्छी तरह समझ लें कि अपने घरों में सुख शांति लाने के लिए, चाहे बच्चों का बौद्धिक विकास करने के लिए, उनके चारित्रिक विकास करने के लिए पवित्र भोजन खिलाना बहुत आवश्यक है। तो बाबा का आह्वान करें, उनकी स्मृति बनाए रखें, साथ साथ में परम पवित्र आत्मा हूँ ये बीच बीच में अभ्यास करें, एक सुंदर माहौल बना दें अपने किचन में, प्रेम का, गुड फीलिंग्स, गुड वाइब्रेशंस, भले ही थोड़े अच्छे गीत बजा लें, कोई अच्छी क्लास चला लें, ताकि मन एकदम आनंदित स्थिति में और योगयुक्त स्थिति में हो जाए। फिर भोजन बनाएं, इस भोजन के प्रभाव से उसके अंदर जागृति आएगी, बिना कहे, क्योंकि कहा तो इन्होंने बहुत होगा, बिना कहे उनके अंदर जागृति आएगी अपने कर्तव्यों की और इस व्यसन को त्यागने की। ये बहुत आवश्यक है। और साथ में ये एक घंटा योग चालू करें अभी से, 21-21 दिन की तीन भट्टी कर लें इस तरह। ये मैं मास्टर सर्व शक्तिवानो विघ्न विनाशक हूँ, ये स्वमान याद करके, और संकल्प करें हमारे परिवार पे जो ये विघ्न है नष्ट हो जाए, इस आत्मा में जागृति आए, ये अच्छा कमाई करे और हमारे घर को चलाने के लिए हमें बहुत अच्छा योगदान भी करे। इस तरह के संकल्प भी करेंगे, योग भी करेंगे, तो धीरे धीरे उस व्यक्ति में जागृति आएगी। क्योंकि आज तक ये देखा गया, जहाँ केसेज किसी भी तरह से ठीक नहीं होते और किसी को भी समझ में नहीं आता कि इसके लिए करें क्या, वहां देखा जाता है कि जैसे योग अभ्यास किया जाता है और जितना अच्छा योग अभ्यास होता है, दूसरे के मन के, बुद्धि के, विचारों के, संस्कारों के परिवर्तन होने लगते हैं और समस्या हल हो जाती है।
जी जी जी, चलिए बेटा जी, हम भी कामना करेंगे कि इनकी भी समस्या दूर हो जाए। आगे भी ये कहती हैं बेटा जी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन अब जॉब करना चाहती हूँ, इसलिए शायद क्योंकि पति पैसे नहीं देते हैं। कहती हैं मैं जॉब करना चाहती हूँ लेकिन हमारे घर में इसके लिए भी मनाही है कि मैं कुछ कार्य करूं, तो यहाँ पे भी मैं बहुत ही दुविधा की स्थिति में हो जाती हूँ कि घर को भी चलाना है, पैसे भी नहीं है, जॉब करना चाहती हूँ, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, और यदि करना भी चाहूँ, कुछ मिले भी, तो ये घर वाले करने नहीं देना चाहते हैं, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत ही दुविधा।
नहीं, ये सब समाधान इनका योग बल से ही होगा। योग एक ऐसी चीज है उससे स्थिति श्रेष्ठ होती है और स्थिति श्रेष्ठ होने से परिस्थितियां स्वतः ही बदलने लगती हैं। मन उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहती, ऑटोमेटिक है, संकल्प शक्ति का ये प्रभाव है, ये सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा।
बिल्कुल, चलिए हम कामना करेंगे ब्रता जी जल्दी से इनके पति जो है वो गांजा भी छोड़ दें और साथ ही घर में पैसे भी ला करके घर की लक्ष्मी को दें। ब्रता जी, अगला जो हमारे पास आया है मेल, ये मानसी छाबड़ा जी का है। ये कहती है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीटेक सेकेंड ईयर। I find a great difficulty in getting up in morning. I have tried creating positive thoughts before going to sleep, but all in vain. Kindly help me. ये बड़ी समस्या युवाओं की रहती रहता है जी, कि हमें सारी रात जगा लो लेकिन सुबह मत उठाओ। ये सुबह की नींद में है क्या? बड़ा रस आता है कि सुबह हमें छेड़ो मत।
रात के माहौल को यदि कोई ऑब्जर्व करे, समझो 12-11 से 2 के, उसमें कुछ और चीज दिखाई देगी। और 2 बजे से और पीछे तक 6 बजे तक 4 घंटे का अगर वो बाहर निकल के देखे, कुछ गुड फीलिंग हो और अगर कोई ऐसा अपरेटस हो जिससे रीड किया जा सके, तो पता चलेगा मन बहुत शांत, एकदम सूदिंग फीलिंग, बहुत शीतल, जैसे चित्त को चैन देने वाला होता है, तो मन उसकी इच्छा होती है उस टाइम सवेरे। और विद्यार्थी क्योंकि फिर देर से ही सोते हैं, उनकी ये भी एक बात है, उनको पढ़ना होता है, अभी बीटेक में हैं तो जरूर इनको अच्छी स्टडी करनी होती है। वो 12 बजे सोएंगे तो कितने भी संकल्प भर के सोए मन में, लेकिन वो 4 बजे तो उठा जाएगा, फिर 6 बजे उठा जाएगा। इसलिए मैं विद्यार्थियों को खास कहता हूँ कि आप अपने अनुसार अपनी दिनचर्या सेट कर लो और इस बात में ज्यादा परेशान न हो कि हमें 4 बजे उठना है, क्योंकि 4 बजे उठ के फिर ये थकान महसूस करेंगे, फिर कॉलेज में इनको सुस्ती रहेगी, जब मनुष्य को सुस्ती रहती है तो उसके ब्रेन की शक्तियां बहुत वीक पड़ जाती हैं, मेमोरी पावर ढीली हो जाएगी, वहां जो पढ़ाया जाएगा वो इनको ग्रहण ही नहीं होगा, तो टोटल एक गिरावट हो जाएगी। इसलिए नींद भी पूरी करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, युवा काल में 7 घंटे नींद तो चाहिए जब वो स्टूडेंट हैं, नहीं तो फ्रेश नहीं रहेंगे ना बॉडीली ना मेंटली। तो इनको इस बात को छोड़ देना चाहिए, वो इवनिंग में बहुत अच्छा योग अभ्यास कर लें। बाबा ने बात पहले बता दी है कि अमृत वेला किसी भी कारण से यदि इम्पॉसिबल हो रही है बात, तो इवनिंग 6:30 से 7:30 का समय, ये भी एक अमृत वेले जैसा ही है। सूर्य ढलता है, प्रकृति पुनः शांत होती है, हर मनुष्य अगर अपने मन को ऑब्जर्व करे तो मन भी एक शांति की गहन अनुभूति में रहता है। उस टाइम यदि योग अभ्यास किया जाएगा तो अमृत वेले की जो मिसिंग है वो पूरी हो जाएगी और इनको कोई अभाव नहीं रहेगा।
बिल्कुल, जैसे आपने कहा ब्रदर जी 12 बजे रात को या देर रात मतलब जागते रहते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं तो फिर सुबह नहीं उठ पाते। लेकिन कई जो विद्यार्थी हैं वो ऐसा भी कहते हैं कि हम यदि जल्दी भी सो जाएं ना, 9 बजे या 10 बजे भी सो जाएं, तो भी हम सुबह नहीं उठ पाते, तो भी हमारी वो नींद जो है वो उतनी ही लंबी रहती है। तो इसका क्या कारण है?
ये युवा काल, क्योंकि इस टाइम और हर एक की हेल्थ अपनी अपनी, हर एक की है बॉडी कितनी नींद चाहती है, और कईयों का ये होता है कि अगर वो ज्यादा सोते हैं ना तो बॉडी और ज्यादा डिमांड करती है। ये बात भी प्रसिद्ध है कि नींद और भोजन ऐसी चीज है जितना इसको बढ़ाओ ये बढ़ जाता है। कई बार बहुत लोगों के साथ ये होता है कि 10 बजे सो गए और सोचा 4 बजे उठेंगे, भाई 6 घंटे की नींद तो पर्याप्त है, लेकिन उठते 6 बजे ही हैं। तो ये कुछ इफेक्ट है बॉडी का, उसकी हेल्थ का, इसलिए ये 10:30-11 बजे सोए, 10:30 तक सो जाएं, फिर भले ही 4 बजे उठ के थोड़ा योग अभ्यास करके थोड़ा रेस्ट कर लें या स्टडी कर लें, जैसा भी इनको उचित हो, तो अपनी अपने अनुसार अपनी दिनचर्या को सेट कर लेना चाहिए। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की
जरूरत नहीं है। वैसे विशेष व्रत जी, जैसे मान लीजिए कई बार जैसे परमात्मा महावाक्य ही ऐसे आते रहते हैं, जैसे महावाक्यों की बात आप कहते हैं कि ब्रह्म कुमारीज में जो सुबह सुबह ईश्वरी महावाक्य सुनाए जाते हैं, तो उनमें भी शायद ये बातें लगातार आती होंगी कि नहीं, अमृत वेले का बड़ा महत्व है, सुबह का बड़ा महत्व है, उठना चाहिए उठना चाहिए। तो व्यक्ति बार बार जब सुनता है ये, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात तो आ ही जाती है कि नहीं यार, मुझे भी उठना ही चाहिए, लेकिन नहीं कर पाता तो बड़ी दुविधा वाली स्थिति और निराशा आ जाती है।
बिल्कुल ठीक है, हमारे यहाँ रोज के डिस्कोर्स में ये बात बहुत आती है
जी,
क्योंकि अमृत वेले ईश्वरीय प्राप्तियों का अनुभव होता है बहुत सुंदर, भाग्य का अनुभव होता है बहुत सुंदर, प्रभु मिलन के अनुभव होते हैं, ये तो सब सत्य है। और बाबा भी इस बात को ज्यादा इंसिस्ट करते हैं, क्योंकि उस टाइम मनुष्य की मन और बुद्धि बहुत क्लियर और क्लीन रहती है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थितियां विशेषकर विद्यार्थियों के लिए, मैं औरों के लिए नहीं कहूंगा, माताओं को जल्दी उठ के योग अभ्यास करना चाहिए, बिजनेस वालों को अपना बिजनेस टाइम पे बिल्कुल समाप्त करके और ठीक टाइम से होके ठीक टाइम पे उठना चाहिए, लेकिन जहां तक विद्यार्थियों की बात है, वो इसमें सफल नहीं होते और फिर निराश होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने अनुसार ऐसी दिनचर्या सेट कर लेनी चाहिए।
बिल्कुल पता जी, अगला हमारे पास जो मेल है वो है आशु श्रीवास्तव जी का। ये कहती हैं, ओम शांति भाई जी, मैं एक कन्या हूँ, नौकरी के लिए तैयारी कर रही हूँ, मेरे परिवार वाले सभी इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, पापा आर्मी में थे, एक साल पहले ही रिटायर हुए हैं, हम 3 बहने हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, घर में अभी किसी के पास नौकरी नहीं है, सबको कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट बना ही रहता है, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि मुझे योग का कोई ऐसा तरीका बताएं ताकि हम निर्विघ्न हो सकें, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी। आशु जी हैं।
ये दो संकल्पों को अपने मुख्य संकल्प बना लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और विघ्न विनाशक हूँ, उठते ही भी इसको याद करें 7 बार, सोते समय भी याद करें, और इसके साथ आधा घंटा सवेरे आधा घंटा से हमको मेडिटेशन भी करें, तो इनके परिवार में अच्छी स्थिति रहेगी, धन का भी अभाव नहीं रहेगा, जो इनकी तबीयत खराब रहती है वो भी ठीक रहेगी, क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे।
बिल्कुल,
यही नहीं करना, और योग अभ्यास में सीधा सा परमात्मा की किरणें मुझ पर आ रही, जैसे हम गॉडली एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, बीच बीच में ये कर सकते हैं, जरूर नहीं घंटों ये बैठे हैं, बीच बीच में एक एक मिनट, दो दो मिनट, 3 मिनट ऐसा अनुभव करें।
बिल्कुल, अभी घर में किसी के पास जॉब नहीं है, ये एक बड़ी समस्या रहता है, जो इन्होंने पूछा है कि क्या कोई विशेष अभ्यास उसके लिए किया जाए।
हाँ, वही एक तो विघ्न विनाशक का अभ्यास, दूसरा 21 दिन के लिए स्पेसिफिक अभ्यास
जी,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्वमान के द्वारा 1 घंटा अच्छा योग करेंगे तो बहुतों के अनुभव हुए कि 21 दिन में उनको एक अच्छी जॉब मिल गई।
जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहता जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। हमारे सभी दर्शकों की जो समस्याएं हैं जल्दी से जल्दी निर्मूल हों, ऐसी हमारी कामना रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में जहां से मैंने शुरुआत की थी, बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है आज के दौर में भय की स्थिति और दुविधा की स्थिति से मुक्त रहना, और साथ ही साथ ये सारी समस्याएं यदि जीवन में आ भी जाती हैं तो एक गहरी बात आज भ्राता जी कह रहे थे कि ये देखा गया है कि जब योग का अभ्यास किया जाता है तो वातावरण बहुत ही शुद्ध हो जाता है, सात्विक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और जो चीजें घटित ऐसी हो रही हैं जो हम नहीं चाहते हैं अपने जीवन में, वो चीजें दूर होती चली जाती हैं। यदि नौकरी आदि नहीं है या किसी प्रकार से धन का अभाव आदि भी है तो वो सारी चीजें भी दूर होती जाती हैं। आपने देखा होगा पहले के जमाने में ये किया करते थे, अब भी अदा कदा हम सुनते हैं कि बरसात नहीं होती थी तो पहले लोग यज्ञ किया करते थे, या किसी राज्य में कोई विशेष प्रकार का विघ्न आ गया होता था तो भी खास प्रकार के यज्ञ किए जाते थे और भी कई प्रकार की युक्तियां की जाती थी। और लगता है कि ये सारी जो मंत्र उच्चारण हुआ करते थे, ये सारी विधियां हुआ करती थी, एक प्रकार से ये वातावरण को पॉजिटिव किया करते थे। योगाभ्यास से भी वास्तव में हमारे घर का वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण बहुत पॉजिटिव हो जाता है और समस्याएं दूर होती चली जाती हैं। तब विशेष करके ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन भी करें और साथ ही साथ योग का अभ्यास भी करें तो आप पाएंगे कि जीवन बहुत सरल होता जा रहा है, समस्याएं दूर होती जा रही हैं। तो डर से, दुविधा से मुक्त रहिएगा, समस्याओं से भी मुक्त रहिएगा और जीवन का संपूर्ण आनंद लीजिएगा। यही हमारी शुभकामना है। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।